नहीं पहले आप ये
हाँ
बताओ, पहले बताओ कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या थी इस सीरीज से?
मेरी तो एक्सपेक्टेशन हाई थी क्योंकि एचबीओ का शुरू में आ जाता है और जब ये साउंड आती है इसका मतलब है कि एक अच्छा शो आने वाला है।
तो बस यही था, बस एचबीओ का टैग था उसका
यानी
साथ में देख
यानी 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 साथ कह रहा है कि हमें अपने पॉडकास्ट से पहले एचबीओ का डाल लेना चाहिए, तो
के
एकदम लेवल हो
एग्जैक्टली ये हमारा
और
इंट्रो
हमें
होना चाहिए, नया इंट्रो है।
Love the Muslims. I think they're great people.
Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me,
"Tabdili na nahi rahi."
Assalamu alaikum. Welcome to the podcast talk, episode 5. मेरा नाम आकिफ है, मेरा ताल्लुक सिंध से है. मेरे साथ आज कोई भी नहीं बैठा हुआ, लेकिन उम्मीद है कि दूसरी साइड पे कोई बैठा होगा. उसका नाम है ताहा.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
और हमारे साथ हैं वन ऑफ द अप एंड कमिंग रियल एस्टेट टाइकून्स, फिटनेस एंथुजियास्ट, शेफ, आर्टिस्ट, मीडिया पर्सन साद.
लाइफस्टाइल गुरु. अस्सलाम वालेकुम.
क्या और क्या ऐड करना है?
लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल गुरु. हां, साद घर पे हो?
नहीं, मैं बाहर निकला हूं.
यार क्वारंटाइन सीन है यार.
तो सब जब सब अंदर है, मैं बाहर हूं, एक ही बात है ना, मतलब कोई नहीं है.
नेक्स्ट लेवल.
नहीं, लेकिन ये बाहर से फिर अंदर जाएगा तो घर वालों को एक्सपोज करेगा ना ये.
नहीं, वो कह रहा बाहर कोई नहीं है.
बाहर कोई नहीं ना,
बाहर कोई नहीं है.
और हमारे साथ आखिर साथ आखिर बैठे हुए हैं. उम्मीद है घर पे ही होंगे, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही है वो घर पे नहीं होते. इब्राहिम.
अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? ठीक ठाक है.
किधर है आप?
मैं बीच में हूँ कहीं पे.
बीच में? अच्छा, बीच में है. नहीं, मैं कहा बीच पे.
रोनाल्डो के साथ
बीच तो खाली हुए मैं आजकल यार.
बस सभी कुछ खाली हो गया. मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे जो जिन लोगों की शादियां नहीं हुई, हमारे दो तीन तीनों लोगों की, दैट मस्ट बी अब्दुल्ला भाई हमारे अभी इस पॉडकास्ट में नहीं है ना.
हाँ
वो बेचारे हैं. लाइक आई रियली फील बैड फॉर देम. देयर इज नो एंड.
मैं रात के 12 सुबह 6 बजे से तो गेम खेल पीएस खेल रहा हूं मैं.
कौन सी गेम?
रेड डेड रिडेम्पशन. कौन सी है ये वाली काउबॉय वाली?
2 या 1?
2.
अच्छा, PS4 पे.
यार मैंने एक हफ्ते से खेल रहा हूं, सिर्फ 16% कंप्लीट हुई. बहुत लंबी गेम.
नहीं, लेकिन वो तो साइड मिशंस अगर तुम करोगे तो यही होगा. वो इस तरह की गेम है. तुम क्या कर रहे हो?
टेम्प्टिंग. वो टेम्प्टिंग इतना साइड मिशंस
कि कंप्लीशनिस्ट तुमने मोड पे के 100% तक लेकर जाना है.
मुझे नहीं पता नहीं ये कब तक चलेगा, तो मैं आराम से खेल रहा हूं ये गेम.
सही है. यानी तुमने पूरा क्वारंटाइन इस पे. हां सही है, लॉकडाउन के टाइम पे पूरा यहीं पे गुजारना. मैंने तो वो ट्राई की यार. मैं मल्टीप्लेयर में सोच रहा हूं वो ट्राई की थी मैंने. सेगा Sonic and Sega All-Star Racing. तो उसमें मल्टीप्लेयर्स आ सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन घर वालों के साथ मिलकर खेलें. तो रेसिंग ही गेम है वो.
रेसिंग ही गेम है, लेकिन चूंकि हम क्वारंटीन में खेल लें तो हम गाड़ियों को थोड़े देर के लिए रोक देते हैं, थोड़ा इंतजार कराते हैं गाड़ी ठंडी हो, फिर हम उसको लेके चलते हैं. इट डजंट मैटर इफ वी लूज, द मैटर इज वी नीड टू राइड आउट द क्वारंटीन. सो वी जस्ट लाइक टू जेनी प्ले सेफली आराम से टाइम.
वो गेम बड़ी वो गेम बड़ी मजे की होगी. एज ऑफ एम्पायर्स 2. यानी मैं चाह रहा हूँ कि कोई मिल जाए वो खेलने के लिए.
3 यार. 3
2 2 2 एज. हाँ 2 हाई डेफिनेशन उसका वर्जन आ चुका है. वो फिट टाइम है अभी खेलने का. सारे लोग घर पे बैठे हैं, लैन पे सेटअप करो. लैन तो नहीं,
मुझे तो ऑफिस जाना होता है, मेरे पास टाइम नहीं है इस तरह की चीजें करने का.
स्टीम पे सेटअप. भाई हम भी घर पे ही काम कर रहे होते. ये गलत तासुर है कि अगर घर से काम कर रहे हैं तो कोई काम नहीं हो रहा. ऑफिस भी जा रहे थे.
मेरा है ना, आप लोगों का फजूल काम है, मेरा एसेंशियल काम है.
नहीं क्या मतलब
यार, आगे अभी तुमने बताया था तुम्हारे कंपनी की सेल्स ऐसी 80% डाउन हो गई है, तो उसका मतलब है कि 80% काम भी तो कम हो गया होगा ना. काम कर ही जा रहे हो तुम.
नहीं चलती कंपनी की. अगर काम हो गया,
हमारी कंपनी चली नहीं, हमारी कंपनी चली नहीं रही.
चली नहीं रही
जब वायरस नहीं था, तब भी हमारे पास कोई काम नहीं था. अभी हमारे पास कोई काम नहीं, तो हम तो वेल एडजस्टेड है.
अच्छा
चलो, आज हम जो है कोरोना के बारे में बात नहीं करेंगे. क्योंकि हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है
और आज हम एक और डिजास्टर के ऊपर बात करेंगे. We are moving from one disaster to another.
Is it a disaster? नहीं आज हम बात करेंगे, आज हम एक सीरीज रिव्यू करेंगे,
आज हम इलेक्शन की बात करेंगे पाकिस्तान की.
नहीं हम बात करेंगे, हमने एक डिफरेंट अप्रोच लिया, हमने कहा यार लोग घर पे बैठे हुए हैं कुछ करने को नहीं है, हम कुछ एक रिकमेंडेशन देते हैं उन्हें हमारी तरफ से पॉडकास्ट टॉक की तरफ से. HBO की सीरीज है चेर्नोबिल, 5-part सीरीज, आप क्या एक तरह से डॉक्यूमेंट्री भी है ड्रामा भी है. हम इस तरह करेंगे इसको कि आज हम 10 मिनट या जितना भी होता है स्पॉइलर फ्री बात करते हैं, अगर किसी ने नहीं देखी, हम चारों ने देखी हुई है, और फिर हम उसके बाद 10-15 मिनट के बाद हम फुल स्पॉइलर ब्रेकडाउन करेंगे इसका. मैं स्टार्ट करता हूँ. मैंने ये सीरीज देखी थी पिछले साल मई में, आई थिंक
मेरे ख्याल से यार स्पॉइलर फ्री कितना स्पॉइलर फ्री हो सकता है, ये वाकया जिसके ऊपर बेस्ड है ये तो हो चुका है, दुनिया को पता है कि क्या हुआ था, कि जिसने भी अगर यानी थोड़ा सा भी
सीरीज के बारे में यानी हम बताने नहीं जा रहे किसकी क्या गलती थी, कौन किसने क्या किया.
ज़ूम पे एक नोटिफिकेशन आ रही है, अगर क्या
क्या नोटिफिकेशन आ रही है ज़ूम पे,
मेरे ख्याल से 40 मिनट्स का आने वाला है टाइमर.
अगर आता है तो हम फिर से स्टार्ट कर देंगे. मैंने
मेरे में तो लिख दिया देयर इज नो लिमिट टू दिस मीटिंग, उसने कह दिया मुझे.
अच्छा
तो हम क्या कह रहे थे, चेर्नोबिल पे आते हैं, क्या कह रहे थे आकिफ?
हाँ उम्मीद है सबने यहाँ पे देख ली होगी. Yes. मैंने इसको पिछले साल देखी थी, आई थिंक जब ये आई थी मैं, क्योंकि जब इसका एमी बज और गोल्डन ग्लोब बज शुरू हो गया था,
तो मैं तो लॉन्ग टाइम व्यूअर हूं एचबीओ का, तो जब भी एचबीओ की नई सीरीज आती है अच्छी हो या बुरी ये देखना जरूरी है, ताकि मैं रिव्यूज दे सकूं.
और फिर मैंने पॉडकास्ट के लिए दोबारा पिछले 2 दिन पहले देखी थी इसे. हाँ
पूरी ओ भाई
पॉडकास्ट के लिए नहीं देखी थी, झूठ बोल रहा है, अदनान भाई को दिखा रहा था, अदनान मेरे को फीड कर रहा था जबरदस्ती.
अदनान भाई को बहुत पसंद आई है, FYI
he was vicariously reliving the experience through अदनान भाई.
तो भाई मैं पॉडकास्ट के सीरियस रहता हूं, ठीक है, मजाक नहीं है.
अच्छा
इसमें बात वो कह रहे थे ताहा भाई के स्पॉइलर क्या नहीं दे सकते, मतलब जो चीज हो चुकी उसमें क्या बात ऐसी करेंगे लोगों को नहीं पता ऑलरेडी.
नहीं पहले आप ये बताओ, पहले बताओ कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या थी इस सीरीज से.
मेरी तो एक्सपेक्टेशन हाई थी क्योंकि HBO का शुरू में आ जाता है और जब ये साउंड आती है इसका मतलब है कि एक अच्छा शो आने वाला है.
तो बस यही था, बस HBO का टैग.
यानी 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 साथ कह रहा है कि हमें अपने पॉडकास्ट से पहले HBO का लाल
ये हमारा इंट्रो होना चाहिए, नया इंट्रो HBO का.
ये आपको इतना दे देते कि आप जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले.
लेकिन अभी लेकिन ये अच्छे टाइम पे आई थी क्योंकि मेरे ख्याल से उस टाइम पे वो खत्म हुआ था गेम ऑफ थ्रोन्स, खत्म हुआ था HBO का, और ये उसके बाद ही आई थी, और लोग उस सीजन लोग गेम ऑफ थ्रोन के सीजन 8 से इतने तप गए थे, इतने डिसअपॉइंट हो चुके थे.
Chernobyl was a much better experience.
बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इसकी एक और वजह थी कि लोग इतने तपे हुए थे कि मुझे याद है कि Reddit के अंदर पूरी memes बन गई थी कि Game of Thrones ने इतना disappoint किया और Chernobyl जो उसके फौरन बाद आया वो इतना बेहतर इतना अच्छा सीजन HBO ने निकाला और लोग उसके गर्विदा हो गए और memes इसके इर्द गिर्द घूमने लगी. लेकिन ये तो मिनी सीरीज थी ना Chernobyl, ये सिर्फ वन सीजन.
HBO वाले दुनिया भर में कोशिश कर रहे हैं कोई और न्यूक्लियर इंसिडेंट करवाएं ताकि सीजन 2
का कहूटा के करवा देंगे क्या है
ला हौला वला.
लेकिन मैं ये कह रहा था
फुकुशिमा में हुआ था ना जो सुनामी आया था. हाँ जापान
में आप इतनी अच्छी बनाते हैं कि आपको अगर फैक्ट्स बताओगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था आप रूट कर रहे होते हैं कि वो हो सकता है कि नहीं हुआ ऐसा. जैसे मैं जब नेशनल ज्योग्राफिक पे वो देखता था वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्री तो मैं हमेशा ऐसा लगता था कि जर्मनी जो है जीत जाएगी जंग आखिर में.
यू आर रूटिंग फॉर जर्मनी.
आप वो जब
स्टोरी
9-part सीरीज से 7-part डोमिनेंट जर्मनी तो उस पे मैं प्रो जर्मनी हो गया था बीच में.
अबे यार
तुमने अपने आप को आर्यन रेस का तो नहीं समझना शुरू कर दिया था साथ
एक तरीके से. मतलब मैं डायरेक्टर की दाद दे रहा हूँ, मतलब वो इस तरह दिखाता है कि आप उसके साथ हुक्ड हो जाते हैं,
यानी आप सिंपैथाइज करना शुरू कर देते हो, सिंपैथी फॉर द डेविल वाली कहानी हो जाती है
ये चीज.
अच्छा तो यानी तुम चाह रहे थे कि जो जो चेर्नोबिल के अंदर यू वर व्हाट कि वो छुप जाए और वो ना खुल सके
प्रो गवर्नमेंट था
उसमें मैं प्रो गवर्नमेंट था उसमें
तो यू सर्व द सोवियत यूनियन यानी
तुम गॉर्बचेव
ये अगर चीज नहीं होती तो यूनियन बच जाती उस वक्त
सोवियत यूनियन
में तो हाय भी है
यानी हां एक थ्योरी है कि यानी दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ सोवियत रशिया
आप देखना पूरा मैन पावर रशिया का और पूरे रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज सारे उधर लग गए थे चेर्नोबिल को कवर करने में
गोइंग इसके मेरे ख्याल से एक मूवी भी आई थी चेर्नोबिल डायरीज के नाम से वो तो मैंने नहीं देखी मुझे काफी मुझे चेर्नोबिल उससे याद है अगर किसी ने कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर खेली हुई हो
एक मैप होता है चेर्नोबिल उसमें
यस मुझे उससे इंटरेस्ट था कि हाँ यार ये सीरीज देखनी है अगर एचबीओ की है अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं तो मैंने कहा इसको देखना ही पड़ेगा और वो इसे 5 एपिसोड है
तकरीबन और भी कुछ मूवीज देखी थी जिसके अंदर इसको काफी हेवीली रेफरेंस किया हुआ था जिसमें
ज़ॉम्बी वाली भी थी लेकिन वो तो फ्लॉप थी बिल्कुल ही
यानी रेडियोएक्टिव जहां भी
कॉल ऑफ ड्यूटी में एक और मैप था कराची किसी ने वो मैप खेले साथ कराची खेले
नहीं शारा फैसल नहीं देखा मैंने
वो कराची यार वो कहीं से कराची तो नहीं हो सकता शायद कहीं लांडी लियारी के अंदर इस तरह की एरिया बनाया हो जहाँ पे गैंग वॉर होती हो लेकिन वो कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स में इस तरह का होता है कि वो जब भी पाकिस्तान के किसी मैप को लेकर आते हैं ना तो अरबी डाल देते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर दीवारों में अरबी लिखी हुई होती है वो अरबी ऐसे लिखते हैं कि अल्फाबेट्स लिखे होते हैं अलिफ बे जीम हा खा कर कर वो के हम
ग्रेफिटी अफगानी गुमराह नहीं जाएगा
और थोड़ी सी रिसर्च करें भाई के अरबी के उर्दू के अंदर किस तरह लिखते हैं जुमले किस तरह लफ्ज लिखे जाते हैं
हॉलीवुड में अगर कोई गया है तो वो आयरन मैन 1 में जब वो कहते हैं जनाब आपका जरे को ज्यादा क्लोज कोई नहीं आया उसको रिप्रेजेंट करते हुए
सही है
लेकिन
वो ये भी जब ओबडाया जो होता है उसको जब वो उससे मांग रहा होता है आयरन मैन से नहीं वो कह रहा था कि मुझे आयरन सूट या मुझे कुछ दो तो वो जो कान में जो साउंड वेव से कर रहा होता है तो उस वक्त वो ये भी कहता है तुम्हारा तोहफा यही है कर कर वो उसे उसके कान पे वो साउंड वेव डाल देता है ये भी थोड़ी अच्छी सही
ऑडियंस स्लो है इसलिए बिल्कुल स्लो में बोल के बताते हैं कि उर्दू इतनी तेज नहीं बोलेंगे लोगों को समझ में नहीं आया
सही है
इसको ओवरऑल आप ग्रेड क्या देंगे इससे पहले हम स्पॉयलर्स में जाएं
चेर्नोबिल को 10/10 यार उसका म्यूजिक उसकी डायरेक्शन उसकी एक्टिंग
10/10
ऑन पॉइंट
मैं 10/10 तो नहीं दूंगा बिकॉज 10 वुड मीन कि इससे अच्छे कोई बन नहीं सकती मतलब दिस इज द बेस्ट यू कैन एवर इमेजिन व्हिच वुड बी अनरियलिस्टिक लेकिन मैं इसको डेफिनेटली इन द हाई 9s में रखूंगा इसको मैं
नहीं क्या मतलब यानी तुमने जिंदगी में कोई 10 आउट ऑफ 10 नहीं देखी
नहीं
जैसे
बैंड ऑफ ब्रदर्स ये भी एचबीओ ने ही निकाली थी ना बैंड ऑफ
ब्रदर्स सीजन 1 अच्छा था दूसरा वाला बेकार था पैसिफिक वाला
देखो 10 आउट ऑफ 10 जो स्केल है ना व्हाट डज इट मीन इट मींस दैट देयर कैन बी नथिंग बेटर देन दिस खत्म
लेकिन बट देयर कैन बी समवन समथिंग इक्वल टू इट
हां इक्वल टू दैट्स फाइन बट दैट इज हाईली कंटेस्टेबल
एक और चीज इसका जॉनर जो है विकिपीडिया पे एक है हिस्टोरिकल ड्रामा व्हिच इज करेक्ट और एक जॉनर है ट्रेजेडी
Which is also correct.
हाँ हम ना podcast का genre ये कर सकते हैं tragedy.
अच्छा नहीं इसमें death rate कितनी बताई थी रशिया ने कि कितने लोग मरे?
31 I think. Spoilers.
31 लोग मरे थे. नहीं रशिया का बताओ रशिया के reported के जितने
official 31.
मैं ये जब series देख रहा था उसमें ये कहते हैं कि ये जितना बड़ा disaster है ये रशिया में ही हो सकता है और जितनी जल्दी इन्होंने control किया रशिया ही कर सकता है control क्योंकि अगर कोई democratic country होता तो वो decide कर रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना वो इतने सिंगल इतने छोटे टाइम पे इतने ज्यादा रिसोर्सेस पुल नहीं कर सकते थे तो अथॉरिटेरियन रिजीम जितनी भी होती है
आई वुड कंटेस्ट
टू दैट बेस्ट होती
है मैं उसको चैलेंज इस तरह करूंगा कि अगर कोई और मुल्क होता डेमोक्रेटिक उस पे बना होता तो शायद इतने बड़े फ्लॉ को जो है ना दबाने की कोशिश नहीं की जाती फॉर द सेक ऑफ द रिजीम एंड फॉर द सेक ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट तो शायद प्रोटोकॉल्स को ज्यादा थोड़ा ख्याल लगता क्योंकि उसमें मेरिट के ऊपर काम होता
नहीं
मेरिट के ऊपर काम होता शायद थोड़ी कॉम्पिटिटिव
नहीं बात ये कि ब्लंडर होता ही नहीं अगर होता तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती वो उसको कवर नहीं कर पाती
नहीं कवर करने की कोशिश करती मिसाल के तौर पे मुझे याद पड़ा अभी ओबामा के टाइम पे अमेरिका के अंदर वो कौन सी जगह थी जहाँ पे वाटर कंटेमिनेशन हो गई थी फ्लिंट फ्लोरिडा कौन सी जगह थी फ्लिंट मिशिगन हाँ तो वहां पे वाटर कंटेमिनेशन हो गई थी ठीक है उसके अंदर फ्लोराइड आ गया था पानी के अंदर बहुत ज्यादा ये कौन सी चीज बहुत ज्यादा लेड क्या इफ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग करेक्टली तो आ गया था और उसपे काफी शोर मचा था लेकिन ओबामा ने पूरे तरीके से उसको दबाने की कोशिश करी थी उसने वहां पे गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कुछ भी नहीं है ये तो ऐसे ही है और पानी लोगों के सामने पी रहा है जबकि लोग वहां पे उस वाटर कंटेमिनेशन से मर रहे थे यार उनकी तपाने के लिए उनके सामने पानी ग्लास के अंदर लाकर पी रहा है और ये ओबामा साहब की हरकतें थी तो
मैं सबको एक बात बताता वुड यू रादर बी इन अ कैटास्ट्रोफी व्हाइल यू आर इन अ कम्युनिस्ट स्टेट और वुड यू रादर बी इन अ कैटास्ट्रोफी व्हेन यू आर in a democratic state put yourself in that
अभी,
position
abhi abhi catastrophe in communist China nahi ek second suno differentiate karo abhi catastrophe in China catastrophe in America compare karte hain na let's
america
log keh rahe
I'll tell
China,
you why
nahi isse baat meri baat to mukammal hone do baat mukammal लोग कह रहे चाइना ने देखो किस तरह डील कर लिया खत्म कर दिया वुहान के अंदर अब खत्म हो रहा है ये हो रहा है चाइना ने अब खत्म हो गया बाकी दुनिया में फैल रहा है अमेरिका के इकदाम बेकार चल रहे हर रोजाना
केसेस नहीं अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम पढ़ नहीं रहे ना जितना मैं चीजों को रिसर्च कर रहा हूँ जो सारे सुन तो लो अब सुन लो एवरीबॉडी
नॉर्थ कोरिया ने कंट्रोल कर लिया
नहीं मैं नॉर्थ कोरिया ने कुछ कह ही नहीं
वियतनाम ने कंट्रोल कर लिया भाई
कंट्रोल चल रहा है हेलो डेमोक्रेटिक कंट्री वो केओस में
चले नहीं इब्राहिम भाई की बात सुनते हैं यार वो उन्होंने सबसे ज्यादा रिसर्च किया
है आप सुनते हैं
चाइना के अंदर इश्यू ये है शुरू से लोग बोल रहे कि चाइना की वजह से सारी दुनिया में फैला बिकॉज चाइना वॉज मिस रिपोर्टिंग एंड नॉट रिलीजिंग द राइट फिगर्स इवन राइट नाउ नोबडी नोज एग्जैक्टली कि चाइना के अंदर कितनी रिपोर्टेड डेथ्स है नहीं बता रहा चाइना दिस इज द रीजन वाई अमेरिका के अंदर इतने इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज काम कर रही है जिसकी वजह से वो छुपा नहीं सकते अमेरिकन मीडिया इज मोर फ्री कंपेयर टू चाइना चाइना के अंदर तो हर चीज स्टेट कंट्रोल है ना नैरेटिव जो पहला जो डॉक्टर था जिसने इसको जा किया उसको तो पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया मार दिया क्या किया नोबडी नोज जितने लोगों ने शुरू में कहने की या इमरजेंसी कॉल या वेकअप कॉल देने की कोशिश की थी रेड अलर्ट देने की कोशिश की थी दे हैव बीन लाइक उनके साथ जो हुआ है वो चाइना के अंदर ही हो सकता है तो अभी भी वो जो बोल रहे कि चाइना ही ने वुहान के अंदर कंट्रोल किया और ये फिगर और पीपल आर स्टिल सेइंग द सेम थिंग अगर चाइना इसको सही तरीके से सही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके सारी दुनिया को बताता WHO को इन्फॉर्म करता सब चीजें करता मोस्ट लाइकली सारी कंट्रीज वुड हैव बीन इन बेटर पोजीशन टू हैंडल दिस के कहते हैं अपने कंट्रीज के अंदर भी तो अगर आप बोल रहे हैं चाइना के अंदर सॉरी
चलो चाइना की मिसाल अगर हटा दें हम वियतनाम में रहते हैं वियतनाम भी कम्युनिस्ट रिजीम है वियतनाम के अंदर DW में एक आर्टिकल आया हुआ है हाउ वियतनाम इज विनिंग इट्स वॉर ऑन कोरोना वायरस तो उन्होंने कहा कि टू टेक द फाइट टू कोरोना वियतनाम इंस्टीट्यूटेड रिगरस क्वारंटीन पॉलिसीज एंड कैरीड आउट कंप्लीट ट्रेसिंग ऑफ ऑल पीपल हु केम इन कॉन्टेक्ट विद द वायरस ये आर्टिकल में लिखा हुआ है ये DW जो जर्मनी मीडिया न्यूज मीडिया ग्रुप है दीज मेजर्स वर इम्प्लीमेंटेड मच अर्लियर इन द कोर्स ऑफ द एपिडेमिक देन इन चाइना where lockdowns of entire cities were used as a last resort to keep the virus from spreading further to dekho vietnam ne bhi isko control kiya vietnam ek communist regime hai usne pakistan keh raha hu america se zyada acche tarike se
isko handle kiya pehle aap ye dekhen ki kin countries ke andar they were able to achieve better sabse number 1 japan ne isko par jitni tezi se upar ja raha tha
japan ne वैसे koi वैसे social distancing norm hai
bhai ha unki unke andar wo keh rahe the ki जो जो पब्लिक है ना वो काफी शऊर रखती है कि जब गवर्नमेंट उसको बोलती है कि तुमने ये है तो वो बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है उन चीजों को दे स्टार्ट फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट जैसा पाकिस्तान के अंदर होता है ना घर में बैठो क्यों बैठे भाई हम तो जाएंगे बाहर तुम्हें क्या पता ये वाला एटीट्यूड नहीं है जापानीज के अंदर जापानीज आर वेरी यानी ओबीडियंट और डिसिप्लिन्ड इन दैट मैनर द गवर्नमेंट ने कोई लाइन दी है दे ट्रस्ट देयर गवर्नमेंट दैट्स द पॉइंट दे ट्रस्ट देम एंड दे फॉलो देम
हाँ तो यहाँ पे ये इससे फर्क क्या होता है फर्क ये कि आपकी आपकी पॉपुलेशन कितनी सिविलाइज्ड है अब वियतनाम के अंदर उसके अंदर आ रहा है उसी आर्टिकल के अंदर DW के कि इंस्टेड ऑफ वियतनाम के जो सर्वेलेंस स्टेट है इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट कोरोना वायरस आउटब्रेक वियतनाम्स ऑलरेडी रॉबस्ट
state security apparatus has applied a widespread system of public surveillance, helped along by well-supplied and generally respected military. Security officials or Communist Party spies can be found on every street and crossing in every neighborhood and in every village. The military is also deploying soldiers.
So, seven spies, its meaning.
So, इसलिए सात बाहर घूम रहा है भाई. इसलिए वियतनाम के अंदर सात बाहर. तुम expose कर दिया सात हमने तुम्हारे वियतनाम.
अच्छा, मेरा दूसरी एक और चीज है. जो अमेरिका के अंदर बहुत तेजी से फैला है, लेकिन अमेरिका के अंदर डेथ रेट हाई नहीं है, उतना करीब भी नहीं है जितना बाकी मुल्कों के अंदर है. इसका मतलब ये कि अमेरिका बीइंग अ डेमोक्रेटिक या सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, उसका हेल्थ केयर सिस्टम, उसका जो हेल्थ केयर जो सिस्टम है अमेरिका का,
सबसे बेकार.
मैं ये नहीं कहता कि हेल्थ केयर एक्सेस सबके पास है, लेकिन जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो लोगों की ट्रीट करने के अंदर ज्यादा केपेबल है. जो उसके पास नंबर ऑफ इन्फेक्शन डिजीज इन्फेक्शन आ रही है वो कंपेयर टू चाइना मोर्टेलिटी रेट उनका इतना ज्यादा नहीं है जो अमेरिका के अंदर.
अभी तो शुरू हुआ है अमेरिका के अंदर, अभी तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते कि मोर्टेलिटी रेट.
नहीं भाई, अमेरिका क्रॉस कर चुका है नंबर ऑफ इन्फेक्शन के अंदर चाइना से ज्यादा. क्या कैसी
जो भी है, जो भी है,
और ये पीक नहीं है इनका, इनका पीक अभी तक रीच नहीं हुआ.
अभी नहीं हुआ पीक, रीच नहीं हुआ.
चले
क्वेश्चन ऑन चाइना इटसेल्फ.
नहीं नहीं नहीं, कि हमारी बहस चाइना नहीं थी या अमेरिका नहीं थी, हमारी बहस थी कि कहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होगा. मेरे ख्याल से मैंने अभी वियतनाम की एग्जांपल दे दी, वहां पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो कम्युनिस्ट स्टेट या एक एक डिक्टेटोरियल रिजीम या एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिजीम कहां पे होगा. तो जापान की तुमने खुद एग्जांपल दी, वहां पे लोग फॉलो करते हैं जो उनको गाइडलाइंस दी जाती है. कौन डिक्टेटोरियल और कौन डेमोक्रेटिक, इट कम्स डाउन टू के आवाम आपकी कितनी तमीज और कितनी.
अच्छा, अब आपसे मैं एक सवाल करूंगा कि आवाम ज्यादा तमीजदार कहाँ होती है, डिक्टेटोरियल उसके अंदर होती है या डेमोक्रेटिक उसके अंदर होती है?
डिक्टेटोरियल.
नोप
भाई, वो आजादी नहीं देते,
वो तो डंडे की आदी होती है भाई.
आप बदतमीजी कर रहे हैं और आप गए,
तो वो सिविलाइजेशन तो नहीं है, वो सिविलाइज होना तो नहीं है.
That's not a sign of being civilized. एक सेकंड, टाइम आउट. देखो, मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि हम लोग जो है कोरोना के बारे में बात नहीं करेंगे. और मैं अपने लिसनर्स, मैं पर्सनली अपोलोजाइज करता हूँ.
मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, एक आखिरी बात बस.
इब्राहिम भाई को निकाल सकते हैं ग्रुप से अभी?
नहीं, एक आखिरी बात.
मैंने नहीं शुरू की थी ये, ताब भाई ने शुरू की थी.
मैंने नहीं शुरू
की, एक बात, सिर्फ एक बात, आखिरी बात इस बात पे.
प्लीज,
जब क्राइसिस आता है उस वक्त आपको कोई एक्शन लेना होता है, और जब आपकी सेंट्रल एक अथॉरिटेटिव पोजीशन होती है जिसमें एक आदमी ऑर्डर देता है, तो जल्दी कमांड फॉलो होता है. वजह से कि आप पहले डिस्कस करें और फिर उस पर डिबेट करें और फिर एक्शन लें. तो जब भी क्राइसिस मोड होता है, एमएनसी मोड होता है, उसमें आपको ये तरह की रिजीम चाहिए होती है जो इसको फॉरन ऑर्डर दे और वो एग्जीक्यूट करे.
एग्जैक्टली, जब भी इमरजेंसी क्यों नाफिज की जाती है, ये इमरजेंसी क्यों ना.
बहुत ही स्टूपिड पॉइंट आप इसको सराह रहे हैं. इसको भी मैं बड़े अच्छे तरीके से आर्ग्यू कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस कन्वर्सेशन टू लॉन्ग.
इसका हम स्पॉइलर में बात करेंगे अभी. जो आई थिंक हमने पिकअप किया था, इब्राहिम भाई ने इसे 10 आउट ऑफ 10 ऑलमोस्ट बट नॉट 10 आउट ऑफ 10 दिया था. साथ इसे तुमने 7/10 दिया था.
10/10 ऐसा लग रहा है मैंने डायरेक्ट किए.
अच्छा, ओके, उफ. तो
सही है. और
क्या ग्रेड दोगे, क्या स्कोर?
हाँ, यानी ऐसा ऐसे 9-10 दे दूंगा मैं, समवेयर बिटवीन 9-10.
मैं ऐसे दूंगा, मैं ग्रेड्स ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं ऐसे दूंगा A+, क्योंकि मैं जब गया था तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी हाई थी, एंड इट आई थिंक इट सरपास दोस एक्सपेक्टेशंस. हाँ,
टू बी ऑनेस्ट, मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. हाँ, मैंने सुना था कि बहुत अच्छा है, बहुत फिट है. मेरे ख्याल से तुमने ही काफी तारीफें की थी.
ये तो मुझे याद है यार, जब ये हम लोग इसको पिक करने गए ना गाड़ी में, खाने के लिए जा रहे थे, इसको गाड़ी में बैठे, ये एकदम हिला हुआ, यार व्हाट है, क्या देख रहा हूँ मैं, तो एकदम आई एम शॉक्ड. एक एपिसोड या दो एपिसोड देखी थी उसने उस वक्त तक, और बैठ के इसका मुंह नहीं बंद हो रहा था. एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली, मेरी और कंपनी की मैनेजमेंट है ये तो पूरी, मेरी ये तो
पूरी.
तो कंप्लीट डिजास्टर है ये तो. ओ अच्छा भाई, ठीक है.
लेट्स गो टू स्पॉयलर्स. अगर कोई यहाँ पे सुन रहा है और उसने सीरीज नहीं देखी तो
प्लान पड़ जाता है,
वो सुन सकता है. लेकिन अगर आपको सीरीज एंजॉय करनी है तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप सीरीज देख के फिर दोबारा पॉडकास्ट पे इस टाइम स्टैम्प पे, जो होपफुली ताहा नोट डाउन कर रहे हैं, इस टाइम स्टैम्प पे वापस आए. तो हाँ भाई, स्पॉयलर्स.
मेरा नहीं ख्याल किसी ने अभी तक देखा नहीं है, सब देख चुके हैं शायद.
इतना व्यू वाइज इतना हिट नहीं हुआ क्रिटिकली एक्लेम्ड है।
सुफियान ने नहीं देखी, हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है।
सुफियान पता है हमें किस तरह के शोज देखता है वो।
सुफियान अलिफ देखता है, सुफियान देखता है हमसफर, सुफियान ये वाले देखते हैं ना।
तो इसमें क्या बुराई है, साथ तुमने नहीं देखे क्या?
उसकी उसकी मर्जी भाई, उसका उसकी मर्जी।
नहीं साथ अगर अगर हम सफर या ये जिंदगी गुलजार है टाइप ड्रामो क्या शुरू में एचबीओ का बॉम्ब आ जाए तो तुम तो
डिपेंड करता है एचबीओ पे मुझे इतना एतमाद है कि वो जब बनाएगा सारे सीरीज तो वो जो है ना रोमांस से ज्यादा स्टोरी टेलिंग पे फोकस करेगा
भाई। ये जो जिंदगी गुलजार है और ये वाले जो है इसके अंदर
उनके वीक स्टोरी टेलिंग तो नहीं है मेरे ख्याल
में, इनकी अच्छी स्टोरी टेलिंग है।
इसका क्या करें मतलब, ये अगर मैं ये शो देखूं इससे मैं अपने लाइफ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूं? मैं
तुमने देखा है
मेरी लाइफ
चलेगा अभी?
तुमने देखा है?
तुमने देख, तुम मंगनी शुदा आदमी हो, तुम्हारे ऊपर तो ज्यादा रेलेवेंट चाहिए इन ड्रामों की। तुम देखो जाके
मैं रायन गोसलिंग की मूवीज ना देख लूं।
इसकी
रायन गोसलिंग की?
ओ रायन गोसलिंग
भाई नहीं,
कौन सी ऐसी मूवी है रायन गॉसलिंग की? द नोटबुक देखोगे जाके।
साथ कह रहा है कि मैं जब अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो आई मैं अपने आप को रायन गॉसलिंग प्रिटेंड करता हूँ ना कि फवाद खान, क्योंकि मैं रायन गॉसलिंग ज्यादा देखता हूँ।
क्या हुआ फिर?
तो हमने कंक्लूड किया है कि साथ जो है वो जब शीशे में देखता है ही सीज रायन गॉसलिंग।
रायन गॉसलिंग
मुझे तो खैर एक्वामैन नजर आता है खैर,
लेकिन रायन
एक चुनो यार, यानी ये क्या मल्टीपल
यार मैं क्या करूँ यार, बचपन से यही साइड है, बचपन से मूवीज नहीं देखनी चाहिए।
लेकिन हाँ वैसे हम अपनी वो इलस्ट्रेशन रिलीज करने वाले हैं सून, तो उसमें लोग देखेंगे तो वो एक्वामैन है जो सुपरमैन का लॉकेट, सुपरमैन की चेन पहना हुआ है फॉर सम रीजन। यानी इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट हो यार कि तुम एक एक्वामैन,
तुम सुपरमैन का फैन बना हो। थॉर पार्ट वन पार्ट टू में जो उसका गेटअप था ना वो भी तुम उसको भी कर सकते हो।
हाँ ये मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन अमेज़न में बच्चा
ब्लॉन्ड होना पड़ेगा, इसको ब्लॉन्ड होना पड़ेगा साथ को, साथ
साथ इंटरनली ब्लॉन्ड है ना थोड़ा थोड़ा, ऐसा कोई मसला थोड़ी है।
कोई मसला, एरन रेस से तो हूं मैं।
चलो मैं इसका प्रेमिस पढ़ लेता हूँ मैं, अगर किसी को नहीं पता। चेर्नोबिल जो है ये मैं विकिपीडिया से पढ़ रहा हूँ, अप्रैल 1986 में हुआ था न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर। आई बिलीव इट इज द वर्स्ट मैन मेड डिजास्टर इन द वर्ल्ड इन हिस्ट्री। और सीरीज जो है बताती है कि किस तरह छोटे मोटे स्टोरीज भी थी उसके अंदर, लेसर नोन्स फायर फाइटर्स ने किस तरह किया, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, वॉलंटियर्स, टीम ऑफ माइनर्स जो प्रोफेसर थे। और इसकी कास्ट है जेरेड हैरिस, who is famous for kya kiya Jared Harris ne yaar
kuch nahi kiya, sab ye banayi series.
ha sahi baat hai, yani ye kya cheez,
Jared Harris nahi, wo Jared Leto hai, sorry.
ha ye Sherlock Holmes jo Game of Shadows hai uske andar villain tha mere khayal se, ha mujhe yaad hai, jisse Robert
acha ha 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 sahi hai
Robert Downey Jr. senior jo hai wo ladai karta hai
Professor Moriarty
ha wo jo slow motion mein ladai karta hai. fir iske andar hai Stellan Skarsgård. He is famous for the Avengers and Thor. Age of Ultron.
वो जो scientist, हाँ scientist जो होता है, जिसको Loki control कर लेता है, वो होता है।
अच्छा मुझे याद नहीं है यार ये।
जिसको Loki control कर।
Emily Watson. यही तो R Day HBO का कि किसी भी actor को उठा लेते हैं, वो series बना देते हैं।
हाँ फिर तो बड़ी बात है यार। और Emily Watson पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है। War Horse और British चीजों में आई है, Kingsman, Golden Circle में। और
अब वो जो HBO की सीरीज थी टू डिटेक्टिव्स, ठीक है उसमें सीरीज 2 में
डियाटलोव बंदा था यार, उसका नाम है पॉल रिटर, उसकी फोटो भी नहीं है विकिपीडिया पे।
मैं बता रहा हूँ ना, जैसे टू डिटेक्टिव सीजन 2 में विलन कौन था? विंस वॉन। किसी ने सोचा था कि इतनी सीरियस एक्टिंग करेगा वो कभी जिंदगी में?
सोचा नहीं, तो वो फैक्ट है, वो नहीं करता सीरियस एक्टिंग, वो सोचा भी
था। HBO ने करवाई उससे और अच्छी एक्टिंग हुई।
ये ऐसा लगेगा लोगों को साथ को सुनने के, ये पॉडकास्ट HBO स्पॉन्सर्ड है, HBO का इतना बड़ा इश्तेहार है हमारी ये वाली पॉडकास्ट, पूरे HBO की तमाम शोज यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं कौन कौन से देखने चाहिए।
अच्छा एक क्वेश्चन मैं गेज करता हूँ, मैंने जब ये सीरीज पहली दफा देखी थी, मेरे ख्याल से 2 दिन में देखी थी मैंने, पहले दिन 2 एपिसोड, अगले दिन 3, आप लोगों ने किस तरह देखी?
मैं जब आई थी उस वक्त देख लेंगे
इन वन शॉट बिंज,
नहीं वो बिंज नहीं, एपिसोड बाय एपिसोड, वीकली एपिसोड।
क्या मतलब?
यानी ये लाइव
मैं जब रिलीज हो रही थी मैं उस वक्त देख रहा था।
ओह
एक साथ नहीं थी?
नहीं HBO एक साथ नहीं
आप लोगों ने
बिंज की थी? मैंने तो
मैंने भी
ओह तो यानी पसंद आई। आई थिंक बिंज अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब अच्छी है, काफी अच्छी सीरीज है। अच्छा मैं इसके नोट्स पढ़ लेता हूँ एपिसोड वन के। एपिसोड वन में ये स्टार्ट होता है जो हमारा मेन हीरो स्लैश विलेन स्लैश एंटी हीरो जो भी है वैलेरी लेगासोव चीफ ऑफ द कमीशन होता है। ये एक्चुअली बताते हैं 2 years आफ्टर द इंसिडेंट वो बेसिकली खुदकुशी कर लेता है। फिर वो बताते हैं वापस जाते हैं 2 साल पहले प्रिपियट में रिएक्टर चार रिएक्टर होते हैं
नंबर फोर
पावर। अच्छा बाय द वे इन्होंने फिल्मिंग की थी लिथुएनिया में किसी और यानी सिस्टर की तरफ से कहने पावर प्लांट था तो उधर उन्होंने फिल्मिंग की थी। तो उधर ये कह रहे थे इनको बताया गया था क्रू को कि एलिजिबली सारी न्यूक्लियर चीजें जो है वेस्ट वगैरह जो भी निकाल दी गई है लेकिन वो कह रहे थे इंटरव्यू में कि नहीं कुछ दिन जैसे ट्यूसडे को 4 बजे के बाद हम नहीं आ सकते थे और कॉन्स्टेंटली जो है मिलिट्री जो है इनको मॉनिटर कर रही थी। और जब लिथुएनिया जो है जब इन्होंने ईयू के लिए अप्लाई किया था तो ईयू ने कहा था कि हाँ तुम लोग आ सकते हो लेकिन ये जो रिएक्टर है तुम इसको बंद कर दो या ठीक करो जो भी है क्योंकि उसके भी वही सेम मसले थे। तो यानी एपिसोड वन में हमें हमारा मेन डियाटलोफ स्टार था यार इस सीरीज का मेरे ख्याल से यानी डियाटलोफ का इंट्रोडक्शन मिला। कितना अच्छा वो बॉस है
मैनेजर है
मैनेजर आई गेस मैनेजर है हाँ इनका कंट्रोल रूम में वो बॉस मैन होता है
साइड मैनेजर।
फिर उन्हें वो बताते हैं कि नहीं रिएक्टर फट गया है कहते नहीं फटा ही नहीं है कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो बताते हैं कि प्लांट डायरेक्टर जो है ब्रिकोनोव बहुत मुश्किल नाम है यार इनके
जो हमारे ऑडियंस पाकिस्तान में सुन रही है उनको ऐसा लग रहा है कि आप एंग्रो का प्लांट स्टेशन बता रहे हैं
हो सकता है। तो वो बेसिकली वो लोग डाउन प्ले करते रहते हैं इसको कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ इवैक्यूएशन नहीं करने देते। फिर
उतना बड़ा मुझे ये चीज समझ नहीं है कि इतना बड़ा उनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है लेकिन उनके पास वो जो रीडिंग्स है न्यूक्लियर उसकी रेले के लिए कोई भी एक ढंग का मीटर नहीं है और वो जो एक मीटर है मीटर मीटर जो है वो किसी लॉकर के अंदर पड़ा हुआ है और उस लॉकर तक पहुंच नहीं सकते और पहुंचना बहुत मुश्किल है और पता नहीं क्या क्या
इतने डिनाइल में होते हैं कि स्टेट हमें ऐसी चीज दे ही नहीं सकती ऐसा हो ही स्टेट ने जो डिक्टेट कर लिया है वो ही हो सकता है इस पैरामीटर से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता।
नहीं मसला इस एपिसोड का हीरो आई मीन सॉरी विलन जो है वो तो डियाटलोव है बाय फार।
हां
और पूरी सीरीज का विलन जो है गवर्नमेंट है
क्या चीज
पूरी सीरीज के विलन जो है वो गवर्नमेंट है
एक तरीके से। हां
हां वो तो है
वो क्योंकि जो लास्ट एपिसोड के अंदर जो केस होता है तो उससे पूछते हैं कि क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है तो वो जो इतनी बड़ी तकरीर देता है वो जो हीरो जो होता है या जो साइंटिस्ट होता है तो वो यही कहता है कि सोवियत माइंडसेट को यानी ये को देता है जो सोवियत रिजीम का जो माइंडसेट है कि हमने हर चीज दबानी है हमने किसी चीज को एक्नॉलेज नहीं करना हमने ये नहीं देखना कि हमने हमसे कोई गलती हो नहीं सकती और यार ये वाला एक माइंडसेट था कि हम और एक 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 उसके अंदर चले जाते हैं उस एटीट्यूड में जिसकी वजह से एक लैक्स एटीट्यूड और अपनी तरफ से फिर चीजों को उस क्वालिटी पे नहीं कर रहे होते तो उसने इस चीज को ठहराया जिसकी तरीके से एक तरीके से स्टेट को वो रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर रहा था जो लास्ट जो काफी लोगों को पसंद आई कि उसने जो कोर्ट रूम में स्पीच दी थी लेकिन हाँ फर्स्ट एपिसोड के अंदर लेकिन ये भी के उसमें भी ये होता है कि जब वो मीटिंग रूम के अंदर जाकर मिलते हैं जो बड़ा सा जो मीटिंग रूम होता है वहां पे एक बुड्ढा कोई सोवियत चचा आता है कम्युनिस्ट पार्टी का गालिबन वो बड़ी कोई स्पीच देता है कि हम ऐसा करेंगे यू करेंगे और लोग हमें याद रखेंगे पता नहीं मोटिवेट करने के लिए जो भी डिजास्टर से तो फिर उससे बड़े लोग मोटिवेट होते हैं लेकिन 2 सेकंड के अंदर सब ठीक फिर उसके बाद हवा निकल जाती है।
उनको ऑर्डर भी होता है ना कि आज रात का टेस्ट सक्सेसफुल होना ही चाहिए मतलब कोई
वो तो हमें बाद में पता चलता है। हाँ वो बाद में पता चलता है ना हमें कि जब वो कहानी ये वाली कहानी तो बाद में पता चलती है कि टेस्ट को उनको अपनी प्रमोशन चाहिए थी और प्रमोशन के लिए उन्होंने अपना ये सारा चीजें की लेकिन उसके अंदर यही हुआ कि वो बंदा जो डियाटलोव होता है वो आता है वो लिटरली सबसे मजे का जो था ना कि वो चीख रहा होता है कि कुछ नहीं हुआ वो एक बंदे को भेजते हैं कि जाकर चेक करो और वो बेचारा उसे जबरदस्ती भेजते हैं वो जाकर देखकर आता है न्यूक्लियर रिएक्टर को ऊपर से कि क्या फट गया है और वो देखता है और उसकी शक्ल जो कैमरा वो नहीं दिखाता शायद न्यूक्लियर रिएक्टर भी दिखाता लेकिन जो उसकी शक्ल दिखाता है ना कि जब वो न्यूक्लियर रिएक्टर को देखता है क्योंकि रेडिएशन पॉइजनिंग हो रही है आपको
आपको रेडियो एक्टिव वेव्स लग रही है जो उसकी शक्ल जो दिखाता है, उसकी शक्ल पे जो जो खौफ होता है, और फिर वो जब वापस आकर बताता है तो उस वक्त भी वो मान नहीं होता, वो चीख रहा होता है ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ कुछ भी नहीं हुआ है कुछ, यानी लिटरली बंदे की शक्ल से आपको नजर आ रहा है कि क्या हो गया है, और फिर एकदम से उसकी उल्टी निकल जाती है रेडिएशन पॉइजनिंग से, तो वो काफी कहले आइरोनिक सीन था, मजे का सीन था।
इस एपिसोड के सबसे मशहूर लाइन 3.6 रोएंटगेन नॉट ग्रेट नॉट टेरिबल,
ये एग्जैक्टली 3.6, और ये 3.6 इसलिए क्योंकि उससे ऊपर कोई मीटर जाता ही नहीं है,
इतना 3.6 इज नॉट गुड। जो उनके हमारे दूसरे प्रोफेसर है जो मिंस में बैठी हुई होती है, जो दूसरा अलग शहर है, वहां पे उन्हें रेडिएशन स्पाइक डिटेक्ट करती है, फिर वो जो है पहले लोकल अथॉरिटी के पास जाती है, वो डिसमिस कर देते हैं, फिर वो जाती है चेर्नोबिल। बाद में वो हॉस्पिटल में भी दिखाते हैं कि जो फायर फाइटर था वो उसके मॉस्को में ले गए, फिर लिगासोव जो है उसको बताता है कि सिचुएशन एक्चुअली बहुत ज्यादा सीरियस है, और हेलीकॉप्टर से दिखाता है कि देखो ब्लू ग्लो जो आ रही है इसका मतलब है कि कोर जो है वो एक्सपोज है, फिर थोड़ी हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में समझाते हैं किस तरह चलता है वो, क्या उसकी फ्यूल है, किस तरह वो फटता है, और फाइनली जो जनरल है आर्मी, रशियन आर्मी बेस्ट, वो अपना हाई रेंज डोसीमीटर लेके आती हैं, और बजट लगे 3.6 से बहुत बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 15,000 होता है, कितना होता
नहीं 2000 होता है, और वो कहते हैं क्या 2000, कहता नहीं क्योंकि हमारे पास जो मीटर है वो 2000 से भी ऊपर नहीं जा सकता, तो पहला वाला जो मीटर था वो 3.6 से ऊपर नहीं जा सकता था, वो कहते थे हाँ चलो 3.6 है, जो आर्मी जो अपना मीटर लेकर आती है वो 2000 से ऊपर नहीं देखा जा सकता, वो कहते हैं कि हमारे पास 2000 से ऊपर जाने वाला मीटर यानी अभी इस ट्रक के अंदर इक्विप्ड नहीं है, तो उसके अंदर भी, और उस वक्त भी जब वो बड़े का मजे का सीन होता है कि ये जो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दो एग्जीक्यूटिव्स जिन्होंने टेस्टिंग करवानी होती है और जो डियटलोव उनको रिपोर्ट करता है, तो वो कह रहे होते कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो वो यही चीख रहे होते हैं, वो जो बाकी दूसरा साइंटिस्ट होता है वो कहता नहीं टेस्टिंग हमें टेस्ट करना चाहिए, तो आर्मी के ट्रक्स जाते हैं, वो जनरल खुद ही कहता है कि मैं सूट पहनूंगा मैं खुद ही जाऊंगा, और जब लेकर आता है और वो वापस आकर बताता है कि 2000 है तो उनकी शक्लें बिल्कुल हालत टाइट हुई हुई होती है, कहते नहीं नहीं ये तो डियटलोव की गलती है, अभी तो पहले वो कह रहे थे कुछ नहीं है, फिर डियटलोव के ऊपर डालने लग जाते हैं, फिर वो वहीं पे वो लोग अरेस्ट हो जाते हैं,
तो लेकिन हाँ बोलो बोलो
उसके अंदर जो सबसे जो जो आप मेरे ख्याल से कितना एक्यूरेटली दिखाया है, लेकिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो रेडियो एक्टिव या रेडिएशन जो पॉइजनिंग की वजह से और जो उसके इफेक्ट्स जो बॉडी के ऊपर होते हैं, जो उन्होंने पेशेंट्स दिखाए थे और जो लोग जिस तरह मर रहे होते हैं उनकी जो शक्लें जिस तरह से पूरी गल रही होती है, यानी एक आई ओपनिंग चीज है, और ये सिर्फ एक न्यूक्लियर रिएक्टर से के एक्सपोज होने से और रेडिएशन से एक्सपोज होने से लोग पूरे डीकम्पोज हो रहे होते हैं इतने गंदे तरीके से, यानी ये हमें उस पर सोचना चाहिए कि यानी अगर खुदा ना खास्ता कहीं भी न्यूक्लियर वॉर हुई, आप न्यूक्लियर उसके अंदर भी नहीं आए, धमाके के अंदर भी नहीं आए, लेकिन जो रेडियो एक्टिव वेव्स आएंगी आप उससे कितना डैमेज हो सकता है एक ह्यूमन बॉडी को कितना डैमेज हो सकता है।
तो ये एपिसोड कंक्लूड होता है बेसिकली, उन्होंने 3 डाइवर भेजने होते हैं, 2 जाके पानी के पाइप्स बेसिकली खोलें और जाके जो कोर जो है वो मेल्ट ना हो बेसिकली।
मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर रहे हैं फर्स्ट एपिसोड के अंदर,
प्लीज,
ये है कि जो पहली इमरजेंसी मीटिंग कॉल होती है गवर्नमेंट टाउन्स गवर्निंग काउंसिल के अंदर, जो हम बंकर के अंदर लेके जाके 3 बंदे बैठ के जो बात करते हैं, जिसमें से जो एल्डर स्टेट्समैन होता है ज़ारकोव उसका नाम है, जिस जगह पे ये मीटिंग होती है इट इज कॉल्ड प्रिपियत स्पोलकोम, वहां पे ये स्टेटमेंट एल्डर स्टेटमेंट है ज़ारकोव, और फिर वहां पे वो जब उसको बताई जाती है कि ये सिचुएशन है, तो वो जो अंदर उनके कॉमरेड्स वो पूरी बड़ी मीटिंग बुलाता है और कॉमरेड्स को फिर वो एक स्पीच देता है जिसमें बोलता है कि हैव फेथ यानी इन द कम्युनिस्ट रिजीम और हमारा, और उसके बाद वो ये भी बोल रहा है वी सील ऑफ द सिटी, हाँ वी सील ऑफ द सिटी ज़ारकोव सेज नो वन लीव्स एंड कट द फोन लाइंस कंटेन द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन दिस इज हाउ वी कीप द पीपल लिसन टू दिस, ये क्या बोलता है, This is how we keep the people from undermining the fruits of their own labor.
Oh,
इसके ऊपर जो बात कहते हैं, जो न्यूयॉर्कर के ऊपर जो मैं पढ़ रहा था, इस पे वो क्या लिखता है कि दिस स्टेटमेंट हैज एवरीथिंग द ब्यूरोक्रेटिक इनडायरेक्टनेस ऑफ सोवियत स्पीच द प्रिविलेजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लेबर ओवर द पीपल हु क्रिएटेड देम द प्रिविलेजिंग ऑफ फ्रूट्स ऑफ लेबर ओवर द पीपल यानी कि जो फ्रूट्स ऑफ लेबर है दे टेक प्रेसिडेंस over the people who created those fruits of labor and of course the utter disregard of human life to yani jo soviet union ke andar bureaucracy jis tarah aur power structure jis tarah kaam karta tha aur upar se leke niche tak jo hierarchy thi uske andar single flow of ideology to the bottom serving officer jo tha usko bhi ye tha ki absolute loyalty to the state and absolute loyalty to the regime to the ideology communism jo bhi unka tha और दे वर ब्लाइंडिंग यानी ब्लाइंडेड बाय और जो था कि नोबडी कुड चैलेंज यानी उस काउंसिल के अंदर भी जब वो छोटी बंकर के अंदर जो मीटिंग हो रही थी पूरे लोग थे जो दो तीन लोगों ने उसमें सवाल भी किया अल्टीमेटली ये था कि एवरीबडी शुड टो द लाइन एंड ऑफ स्टोरी नो क्वेश्चंस नो क्या कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं और ये ऑफिशियल पॉलिसी एंड एवरीबडी इज गोना फॉलो दैट तो दिस इज समथिंग व्हिच इज यानी व्हिच हाइलाइट्स इन द फर्स्ट आपको बहुत पहले से वो जो टोन है ना वो सेट हो जाती है
एपिसोड 3
आल्सो देयर इज वन फ्लॉ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ इन द सीरीज इज क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वैसे तो 80s को जिस तरह उन्होंने कम्युनिस्ट रशिया को जिस तरह पोर्ट्रे किया है from the environment to the furniture to the light to the clothing it's all very authentic but there's one thing I was reading jisme unhone bola tha ki the one noticeable mistake in this respect concerns the series makers apparent ignorance of the vast divisions between different socio economic classes yani wo log ye assume kar rahe the kyunki communism thi to communism in its purest form russia mein exist kar rahi thi everybody was equal nahi जो इनकी जो आप कह रहे हैं जो व्हाइट कॉलर वाले थे वो सब एक एक सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर से नहीं बिलोंग करते थे उनके अपने जो रेजिडेंस या उनके जो भी क्या कहते हैं लिविंग कंडीशंस थी वो भी डिफरेंट थी फ्रॉम अ फायरमैन टू अ पर्सन हु वाज एन एकेडमी ऑफ साइंस के जो प्रोफेसर था जो मेंबर था उसका डिफरेंट रहने का तरीका था सो देयर आर ऑब्वियसली इट्स आई वुडंट कॉल इट एग्जैक्टली अ डॉक्यूमेंट्री बिकॉज इसके ऊपर जो रिव्यूज आए उसमें ये आया कि दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिक इवेंट बट द हिस्टोरिक इवेंट इटसेल्फ इज सो यानी वेग यानी उसकी रिपोर्टिंग चूंकि वो कम्युनिस्ट रशिया के अंदर से हो रही थी तो नोबडी एक्चुअली वॉज अलाउड टू रिपोर्ट ऑथेंटिकली ऑन इट तो जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बहुत ही टूटी फूटी से कंस्ट्रूड और एक बड़ी सी स्क्यूड किस्म की उसमें से निकल कर आ रही है The reason why this series was made now was 2 years ago, two books were written on it. Ek book jo thi, wo ek historian ne likhi hai, aur ek book jo hai, ek journalist ne likhi hai. And both of them have collected information, whatever they could find, on something which happened, you know, over 3 decades ago. To uski base ke upar ye series bani hai, wo books ke andar kitni information thi, aur us books ki information ko mazid unhone dramatize karne ke liye, for the dramatic effect, kafi cheeze change ki hai. Especially the last episode.
Voices from Chernobyl book का नाम अगर किसी ने पढ़नी है
हाँ तो इस तरह से तो all take मतलब go into this but इसके अंदर कुछ reviewers ने बोला है कि the sad part the downside of such a great series is कि people will start taking everything within the series as something that actually happened when in fact it sort of adds element of यानी के क्या कहते हैं जो मसाला जो इसको कहते हैं मसाला डाल दिया और कुछ फैक्ट्स को चेंज कर दिया कुछ इनऑथेंटिक अपनी तरफ से रिपोर्टिंग कर दी ये अपने ध्यान में रखें नॉट एवरीथिंग इन देयर इज एज इट हैपेंड खैर
तो टीवी सीरीज है ना वो कोई नॉन एक डॉक्यूमेंट्री थोड़ी शो किया है उन्होंने जो इनके जॉनर है वो टीवी सीरीज का मिनी सीरीज का
हां मतलब इट इज अ ड्रामा लेट्स नॉट फॉरगेट इट्स नॉट इट इज अ ड्रामा हॉलीवुड ड्रामा है एंड उसके अंदर वो इफेक्ट डाला है इन्होंने
टिकट सेल करने मसाला डालने लोग क्यों नहीं देखेंगे
नहीं तो बैटमैन भी सुपरमैन में सुपरमैन वाकई में क्या मर जाता है
बैटमैन सुपरमैन में कहाँ मरता है सुपरमैन
मर जाता है एंड में
नहीं मरता जिंदा होता
कैसे पता
क्या मतलब हार्ट बीट उसकी साफ सुनाई देती है
वो वेंटिलेटर पे होता है
किसको सुनाई देती है हार्ट बीट
उसकी एपिसोड 3 एपिसोड 3 हां तो बेसमेंट जो है वो ड्रेन कर देते हैं जो तीन ड्राइवर हैं और खासे तीनों ड्राइवर जो है बच जाते हैं आई थिंक कुछ साल तो वो जिंदा रहते हैं जो बहुत ही यानी
मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता कि क्या हुआ तीन ड्राइवर्स का
वो एंड क्रेडिट्स में बताते हैं कि तीनों जो है सरवाइव किए थे कुछ साल
अच्छा
और मेरे ख्याल से दो अभी तक उस वक्त जिंदा भी थे तो एस्टोनिशिंग एनीहाउ द बेसमेंट को वो ड्रेन कर देते हैं लेकिन न्यूक्लियर मेल्टडाउन जो है वो तब भी शुरू हो जाता है तो उन्हें जो है नीचे खुदा के एक हीट एक्सचेंजर इंस्टॉल करना होता है उसके लिए उन्हें माइनर्स चाहिए होते हैं और साथ साथ जो है वो जो प्रोफेसर है फीमेल प्रोफेसर है वो जाती है मॉस्को वो डियाटलोव से बातचीत करने के लोगों से पूछना है टॉप्टनोव अकेमोव जो रिएक्टर जो कंट्रोल टीम थी उनसे बात करने की कोशिश करते हुआ क्या और क्या
लिखा हुआ है ना कि फीमेल प्रोफेसर कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी
मतलब नहीं करती थी वो बेसिकली उन्होंने कैरेक्टर बनाया टू डिपिक्ट द एकेडमिक कम्युनिटी ऑफ द सोवियत यूनियन हु टुक यानी एज अ डिपिक्शन ऑफ दैट कम्युनिटी
जो कि सारे मेल थे
हां मेरे ख्याल से उन्होंने वो यानी टू सिंपलीफाई थिंग्स उन्होंने 15-20 साइंटिस्ट थे उन सबको एक ही साइंटिस्ट के अंदर कर दिया ये किया
और आई थिंक एपिसोड 3 में इतना ही है खास नहीं है क्योंकि फिर वो बताते हैं वो जो फीमेल फायर फाइटर थी उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो वो उसको रिपोर्ट कर देती है फिर उसका फाइनली वो जो फायर फाइटर है वो मर जाता है उनको फिर जिंक बास्केट के अंदर कंक्रीट मास ग्रेव में दफनाया जाता है
वो और उनको जो भी एनिमल्स से ये भी करना पड़ता है कि जो भी एनिमल्स उस एरिया के अंदर थे उनको शूट डाउन करना पड़ता है कुत्तों को चिड़ियाओं को
बॉडीज को भी डिस्पोज करना होता है उनकी
और ये दिखा देंगे एनिमल शूट डाउन करने ज्यादा इमोशनली बेरिंग है वजह से कि इंसान को शूट डाउन करना
व्हाट
जानवर मार रहे होते हैं वो इतने अफसोस से मार रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग और जब इंसान मार रहे होते हैं तो कोई कोई
भी
सही बात पपीज को जब E4 रेजिडेंट्स अच्छा बाय द वे थोड़ी सी इवैक्यूएशन भी शुरू कर देते हैं प्रिपेयर को इवैक्यूएट कर देते हैं मैं ये चीज बताना भूल गया उन्होंने आई थिंक वो वैलेरी जो है रिकमेंड करते हैं मेरे ख्याल से 200 या समथिंग लेकिन वो सिर्फ इवैक्यूएट करते हैं जो आई थिंक 30 स्क्वायर किलोमीटर जो इमीडिएट सराउंडिंग है
प्रिपेयर की इवैक्यूएशन से मुझे याद पड़ता है कि जो जब ये हो रहा था न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक्सपोज हो रहा था उसमें से लाइट जो निकल रही थी ब्लू ग्लो जो निकल रहा था तो उसमें क्या होता है जो प्रिपेयर के जो रेजिडेंट्स जो होते हैं जो सबर्ब्स से जो होते हैं वो सारे जो जहाँ पे न्यूक्लियर वर्कर्स की जो फैमिलीज और दूसरे लोग रहते हैं तो वो इसको देखने के लिए ना पिकनिक के तौर पे ना वो एक ब्रिज होती है जहां से ये पूरा व्यू नजर आता है तो वो लोग वहां चले जाते हैं और वहां पे वो रेडियो एक्टिव वो जो ऐश जो होती है ना वो आ रही वो भी आ रही होती है और उनको पूरी नजर चीज आ रही होती है कि वो जो ग्लो एक्सपोज न्यूक्लियर रिएक्टर से जो ग्लो ऊपर आसमान की तरफ जा रही होती है रोशनी तो एंड क्रेडिट्स के अंदर उन्होंने बताया था कि जो भी लोग थे ना उस ब्रिज में अपेरेंटली वो सारे वो सारे नहीं सरवाइव यानी मर गए यानी
मतलब
हमारी और ये बड़ा अच्छा पैरेलल है ये बड़ा अच्छा पैरेलल है कि हम लोग अपने पिकनिक मनाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे एक डेंजरस चीज चल रही है और लोग अपना बाहर घूमने फिरने और उससे एक्सपोज हो जाते हैं और फिर एंड में सफर करते हैं
किसी को याद है जब बावलपुर के गरीब पेट्रोल की ट्रक गिर गया
हाँ एग्जैक्टली
पढ़ने निकले थे के तौर पर और सिगरेट भी वहीं पे पी थी
हाँ और फिर उसमें पता नहीं कितने लोग मर गए थे उसी में आग लगकर मर गए थे
एपिसोड 4 द हैप्पीनेस ऑफ ऑल मैनकाइंड फिर जो है वाइडर इवैक्यूएशन भी करते हैं चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन से डीकंटामिनेशन की होती है वो बताया वो जो सोवियत अफगान वॉर जो उस वक्त चल रही होती है 1986 में उधर से सिविलियन ड्राफ्टीज को बुलाया जानवरों को इरेडिकेट करने के लिए फिर क्या होता है बेसिकली उन्हें छत जो है क्लियर करनी होती है पावर प्लांट की क्योंकि वहां पे ग्रेफाइट होती है रोबोट वो लेके आते हैं नहीं चलता जर्मन रोबोट तो वो 3828 लोगों से क्लियर कराने की कोशिश करते हैं बाय हैंड जिनके पास सिर्फ 90 सेकंड्स होते हैं ईच ओनली वंस तो 3828 ट्रिप्स
यानी क्योंकि वो
चीज की मैं बात कर रहा था ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं करा सकती कभी भी
क्योंकि पता नहीं ये यानी
आप इस तरह का ऑर्डर जारी करें देखें कितनी रेजिस्टेंस आती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में विलिंगली अपनी जान रिस्क करने के लिए जो है इतने सेकंड यहां पर जाओ एक अथॉरिटी गवर्नमेंट आपको जबरदस्ती बैन में बिठाएगी और कहेगी जाओ।
लेकिन हमारे आदमी
तो वैसे ही है, मरना तो वैसे ही, इस तरह मरना है या गोली से मरना है, तुम्हारी मर्जी।
तो फिर क्या होता है कि वो वैलेरी को वो भेजते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, वहां पे वो झूठ बोलता है अपनी रिपोर्ट के बारे में, और फिर जो है फॉलो यानी उसका एक बिल्डअप होता है क्या जो एक्चुअल ट्रायल होगी सोवियत यूनियन के, उसमें वैलेरी क्या कहेगा।
और फिर सीजन सीरीज फिनाली के अंदर वो मेरे ख्याल से पूरा उसी के इर्द-गिर्द घूमता है, वो जो कोर्ट रूम में।
हाँ, बड़े
अच्छे हियरिंग
करता है वो।
लोगों को काफी पसंद आया था वो वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर एनर्जी के उस वर्किंग से इतना वो नहीं थे, फेमिलियर नहीं है लोग और नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि
पावर प्लांट फॉर डमीज।
हाँ, एग्जैक्टली, एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 5 फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उसने किया। तो ये चीजें फिर उसमें ये था कि उसमें उस वक्त तक मिनिस्टर जो था, जो मिनिस्टर एक मिनिस्टर जो था अपेरेंटली शायद डिफेंस सेक्रेटरी मिनिस्टर या कौन सा मिनिस्टर था जो सपोर्ट कर रहा था, हाँ, जो पूरा टाइम इसने सपोर्ट किया उसके ऊपर, हाँ। वो जो इतना एक्सपोज हो चुका था उसके ऊपर असरात आना शुरू हो गए थे, यानी रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग के। तो उसने कहा था कि मैं कुछ 5-6 महीने में मेरा टाइम हो जाएगा। इसको भी हो गए थे मेरे ख्याल से जो चीफ साइंटिस्ट था, लेकिन इसने अपने आप को खुद ही सुसाइड कर मार दिया। मारने से पहले उसने ये जो सारी चीज थी ना, ये जो स्टोरी थी या ओरिजिनल उसने रिकॉर्ड की थी टेप्स में, वो टेप्स उसने कहीं चाकर छुपाए थे और फिर उसने सुसाइड किया। हाँ, तो वो ऑफलाइन पॉडकास्ट किया था उसने टेप्स पे, और फिर वो जाकर उसने
पेश करते हैं उसको
के उसकी इस कुर्बानी की वजह से आज हमारी ये एपिसोड रिकॉर्ड हो सकी है, हो सकी है।
तो अल्टीमेटली ये कि वो बहुत जबरदस्त ट्रायल होती है, ट्रायल बहुत मजे की लगी थी मुझे, जिस तरह वो अपनी छोटी सी पावर पॉइंट उस जमाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता है, और अल्टीमेटली ये आई थिंक कंक्लूजन ही बोलती है कि हाँ, डियाटलोफ ने बहुत ही ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस डिस्प्ले की थी, लेकिन अल्टीमेटली उसके पास वो सेफ्टी बटन था AZ-5 जो नहीं चला क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे बचाने की कोशिश की थी डिजाइन में। तो अल्टीमेटली जो है ये गवर्नमेंट पे ही था इसका कसूर।
हाँ, वो एंड के अंदर यही कहता है कि उससे पूछते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसकी पूरी स्पीच ही यही होती है कि कट, हमने कॉर्नर्स कट करने की कोशिश की थी सोवियत स्टेट ने। ये
तो ये थी हमारी छोटी सी सीरीज चेर्नोबिल। 9.4 ऑन IMDb, 96% रॉटन टोमेटोस।
Highest rated है मेरे ख्याल से, highest rated show है ना Rotten Tomatoes IMDb में।
इब्राहिम भाई ने कम रेटिंग दी है इस पे, नहीं तो 10 होती।
हाँ, सही बात है।
मेरे ख्याल से उससे पहले Game of Thrones थी, लेकिन after the last season मेरे ख्याल से वो चली गई, बहुत नीचे चले गई है उसके बाद।
I think this season blender का set a standard कि जितने हिस्टोरिकल ड्रामास जो है ना वो कितने किस तरह पिक्चराइज होने चाहिए। दिस हैज रियली चेंज्ड द लेवल।
अब तो हर डायरेक्टर का अपना स्टोरी स्टाइल होता है, आप फोर्स नहीं कर सकते कि हर किसी को इस तरह बनाना चाहिए।
नहीं, स्टोरी स्टाइल तो सही है, नहीं द पॉइंट इज इट शुड बी एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी एंटरटेनिंग एंड इट शुड बी नॉलेज, मतलब ऑथेंटिक,
इंफॉर्मेटिव
एंड वो सब चीजें थी। अब वो अगर कोई भी हर डायरेक्टर का अपना स्टाइल है, अगर वो स्टाइल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इट्स अ फ्लॉप। The point of any series is to entertain people. People should enjoy it.
इसका एक और है कि देखो, इसको आराम से ये लोग जो है 3-4 सीजन खेच सकते थे। Yes, बहुत आसान है इसको खेचना।
नहीं, मुझे नहीं लगता।
If they had dragged it out a bit too long, तो वो बुक
थी।
क्या हुआ?
Obviously quality
बन जाता
है ये। ये top rated TV number 5 पे है ये list के अंदर।
All time.
Planet Earth 2 है, number 2 पे Planet Earth है, number 3 पे Band of Brothers है, number 4 पे Breaking Bad, number 5 पे Chernobyl।
Number 1 पे कौन है?
Planet Earth
2।
अच्छा, ये BBC की जो है,
जो सीरीज है वो documentary।
David Attenborough जो bro क्या नाम है, Attenborough वो करता है।
There is a wildlife over here, जिसकी भारी सी आवाज है।
Attenborough, David Attenborough, हाँ, वो narrate करता है उसे।
सही है।
एनी फाइनल थॉट्स?
ब्रेकिंग बैड भी जो है ना एक
फाइनल थॉट्स में क्लोजिंग में अपना लास्ट कमेंट ये दूंगा कि आप देखें पाकिस्तान के अंदर एज पाकिस्तानीज डू वी रिलेट टू इट? हाँ ओवरसीज, लेकिन मैं पाकिस्तान एज अ कंट्री की बात कर रहा हूँ, द नेशन, कि हाउ क्लोजली डू वी रिलेट टू दिस?
The bureaucracy,
the incompetence, the criminal negligence, the ये छुपाना दबाना लोगों का इसके अंदर, यानी हमारा जो ट्रायल जिस तरह होते हैं, अगेन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट, मतलब द होल थिंग, यू कुड से दिस वॉज हमारे लिए काफी रिलेटेबल है, एंड व्हाट वी वेयर डू वी स्टैंड, यानी आर वी स्टिल इन द
मैं उसमें आर्मी कॉलेज में पढ़ा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं।
सही है भाई,
मेरे ख्याल से सारी आर्मीज इसी तरह से ऑपरेट करती हैं। कौन सी ऐसी आर्मी है जो इस तरह से
operate? मैं बताता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे उसमें एक रूल था यूनिफॉर्म पहन के आना है, एग्जैक्ट यूनिफॉर्म पहन के आना है, उसकी बेल्ट होती थी स्पेसिफिक। तो एक दफा मैं बेल्ट पहन के नहीं आया था, तो उस आदमी ने ये नहीं कहा कि बेल्ट नहीं पहनी हुई, उस साथ जो जो वहां पर जो इंचार्ज था उसने कहा ये हमारी बेल्ट नहीं है।
अच्छा,
मतलब ये हमारी बेल्ट नहीं पहन कर आया है ना, मैं बेल्ट नहीं पहन कर आया, बगैर बेल्ट के पैंट पहन कर आया हूं। तो उसने ये नहीं कहा बेल्ट क्या है आपकी, उसने कहा ये हमारी बेल्ट नहीं है।
अच्छा,
ओ इतने कोडेड है वो हर चीज में, वो सिर्फ वो वंस एंड जीरोस में चीजें देखते हैं, वो इस तरह नहीं देखते।
ठीक है, दैट्स द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, दैट्स हाउ इट वर्क्स, मतलब ये That is how the institution of army works. तो मेरे ख्याल में
कितना लंबा खींचा हमने यार इसे?
Nuclear power is not
घंटा।
या मैं पाकिस्तान के कराची के पास मेरे ख्याल से है न्यूक्लियर पावर प्लांट, यस
सिंध में
ऐड हो गया
मेरे सिंध में हाँ साथ पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर
न्यूक्लियर रिएक्टर में
उसको कराची में स्टार्ट होना था,
उसको चार कराची के अंदर चार मेजारों ने उसको घेरे में लिया हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो हमारे चार पीर जो हैं जिनके मजार आते हैं उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के,
फायर पीर, वाटर पीर, एयर पीर और
न्यूक्लियर पीर, अच्छा एयर पीर और
उनके कंबाइंड
वो न्यूक्लियर पीर बन जाते हैं, तो वो हमें डिफेंड करेंगे अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन होगी। हम लोग अपने घरों में नहीं जाएंगे, हम बाहर ही रहेंगे।
नहीं है, कोरोना पीर फेल हो गए हमारे बेचारे, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सका तो
अच्छा अलेजेडली जो है सिर्फ सिंध और पंजाब में है, एक चश्मा में है और कराची में है। मेरे ख्याल से सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बलूचिस्तान में होने चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेस उनके पास है,
न्यूक्लियर टेस्ट वहीं पे हुआ।
उन्हीं को समझोगे, उन्हीं को बिचारों के साथ जाती करो, खुदा ना खास्ता कुछ हो,
जाती क्यों एक प्रिविलेज है वो, कह सकते हैं हम
नहीं न्यूक्लियर टेस्ट
कोलैटरल पे रहते हैं वो लोग, अगर फट भी गया तो एक और कोलैटरल हो जाएगा।
न्यूक्लियर टेस्ट वहीं पे हुआ था मेरे ख्याल से,
हां यस यस करेक्ट,
केबीके में हुआ था शायद,
नहीं नहीं बलूचिस्तान में हुआ था, हमने उसने
और वहां के लोग उस पे शिकायत करते हैं कि यानी ये जो उसके इफेक्ट्स पड़े थे उस न्यूक्लियर टेस्ट के, पड़ेगा इसको थोड़ा डिटेल।
2018 का आर्टिकल है द न्यूज का कि पाकिस्तान एम्स टू मेक 50 पावर प्लांट, सॉरी 32 न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय 2050।
अभी कितने? दो,
अभी कुछ पता नहीं है या नहीं है,
अच्छा स्टेट सीक्रेट है ये अभी।
हाँ स्टेट सीक्रेट है।
अच्छा
अदनान भाई शायद बताते हैं अगर वो किसी ना आर्ट में।
चलो मेरे ख्याल से अब हम एक ऐसे पोजीशन पे आ गए हैं कि अब हमें पता नहीं क्या रिपोर्ट, हाउ कैन वी गो हैव अ कन्वर्सेशन एंड नॉट से कोरोना या नॉट डिस्कस कोरोना, यानी एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पे कोरोना के एक दफा भी डिस्कशन में ना,
सारे न्यूज जो है वो कोरोना पे रिवॉल्व हो रही है।
हाँ unfortunately.
और काफी अरसे तक रहेगी. I am seeing for the longest time it will always be about corona. The impact is going to be so immense.
अभी हमें एक 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 काफी लोगों ने हमें फीडबैक भी दिया है इस दौरान. एक दो लोगों को हमारा पिछली यानी फीडबैक भी आया कि उनको पसंद आया हमारा ट्विटर पे, पता नहीं क्या नाम था, उन्होंने दूसरी पॉडकास्ट को भी अनफॉर्चुनेटली या जो भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि उनको वो वाला पॉडकास्ट नहीं पसंद टीपीआर का. टीपीआर पॉड वाले ने भी हमें एक मैसेज छोड़ा था. हम क्योंकि ये अगेन हम नॉर्मली रिकॉर्ड करते नहीं है रिमोटली. लास्ट टाइम हमने डिस्कॉर्ड पे किया था, उसकी साउंड क्वालिटी. अब हम इस दफा जूम ट्राई कर रहे हैं, सो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट. लास्ट टाइम के मुकाबले में क्या अगर लोग बता सकेंगे बेहतर, ये वाली क्वालिटी शायद बेहतर आई हो. सो ये
चलो यार रैप अप करो, मुझे भूख लग रही है.
थैंक यू प्रेम भाई, आपने सबसे ज्यादा रिसर्च की. हम बहुत
घर पे बिरयानी बनी है, बता रहा हूँ, तुम मिस आउट कर रहे हो.
मैंने आज के दोबारा
यार साथ तुम्हारी बिरयानी याद आ रही है यार, तुमने बड़ा गलत किया
यार. तुमने होम कुकिंग का तुम्हारा वैसे अब तो बहुत
कुछ है. अगर चल जाता और अभी मैं तो नुकसान में होता ना, अभी मैं कर दूंगा तो मैं नुकसान में होता.
तो तुम घर में बैठ के तुम बिरयानी बना रहे होते, डिलीवर कर दे लोगों को.
साथ तुम क्यों रिस्टार्ट क्यों नहीं करते हो?
तुम वैसे बाहर घूम रहे हो.
लाइसेंस, बाहर घूमने के लिए अब लाइसेंस चाहिए.
नहीं तो तुम अब क्या कहते हैं अरेंज कर सकते हो, उसमें मसला नहीं है
यार. तुम वियतनाम वियतनाम स्टेट के सिपाही हो, तुम्हें मुश्किल नहीं होनी चाहिए.
थ्रू गटर सीवरेज लाइन, ठीक है, मैं वहां खाना लेके नहीं जा सकता ना.
अच्छा, तो हमारे लिसनर से गुजारिश है हमें कोई फीडबैक दें ताकि हम गुफ्तगू रख सकें.
सजेशंस दें, आइडियाज दें, क्रिटिसाइज करें. पिछले वाली एपिसोड को क्रिटिसाइज किया था बिल्कुल. अगर हमें आइडिया सजेशन भी दें कि हम क्या
तैयार है फुल रिसर्च करने के लिए, आप उन्हें बस कुछ दे रिसर्च करने के लिए,
वो रिसर्च कर लेंगे. और
ट्विटर बहुत एक्टिव है. रेडिट, इंस्टाग्राम नहीं क्योंकि सुफियान जो है नेटफ्लिक्स पे बिजी है. और
मनी हाइस्ट देख रहा है आजकल.
क्या देख रहा है आजकल?
मनी हाइस्ट अपेरेंटली.
हां सीजन 5 कितने, कौन सा सीजन आने वाला है? 3 अप्रैल को सीजन 4. हां 4 आने वाला.
मनी हाइस्ट
जल्दी करो रैप अप यार. ओके ठीक है,
भूख लग रही है भाई. इब्राहिम भाई को बिरयानी खाने,
इब्राहिम भाई ये बिरयानी खाने जा रहे हैं. साथ गुजारिश है आप घर पे वापस आ जाएं.
मैं आने वाला हूँ, बस 15 मिनट का रास्ता बाकी.
15 मिनट
पैदल हूँ ना.
ओह अच्छा, तो बाकी लोगों से गुजारिश है घर पे रहें. और अंटिल देन आई थिंक आज के एपिसोड को हम क्या रेटिंग देंगे? 3.6
आउट ऑफ 2.4.
क्योंकि हमारा मीटर उससे ऊपर नहीं जाता, 3.6 से मीटर ऊपर नहीं जाता.
Until then, सलाम फ्रॉम द चौक.